नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राज्यसभा में आज राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, वंदे मातरम राष्ट्र की आत्मा जागृत करने वाला मंत्र। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में बताया, पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने के बाद देश के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 736 लाख मीट्रिक टन की कमी आई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन के दौरे पर मणिपुर में इम्फाल पहुंची। वे वहां कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने कई उड़ानें रद्द होने और देरी के मद्देनजर इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एल्बर्स को तलब किया। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम चंडीगढ़ में। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर आज फिर चर्चा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को इस पर चर्चा आरंभ की थी। चर्चा का समापन करते हुए राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि वंदे मातरम राष्ट्र की आत्मा जागृत करने वाला मंत्र है और ये देश की संस्कृति के साथ जुड़ने का अवसर भी देता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम सभी के लिए प्रेरणा का भावनात्मक स्रोत है और देश को एकता के साथ आगे बढ़ाने का मंत्र है। श्री नड्डा ने कहा कि ये गीत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस राष्ट्रीय गीत ने सभी में ऊर्जा का संचार किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में चुनाव सुधारों पर गृहमंत्री अमित शाह के भाषण की सराहना की। श्री मेघवाल ने कहा कि उनके भाषण का सार था कि जो देश का नागरिक नहीं है वो देश में मतदाता भी नहीं हो सकता। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष को निर्वाचन आयोग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR पर भ्रामक सूचनाएं फैलाने पर कड़ा जवाब दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाकर उपयोग करने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 736 लाख मीट्रिक टन की कमी आई है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान श्री गडकरी ने कहा कि इथेनॉल पर्यावरण अनुकूल ईंधन है और ये प्रदूषण कम करता है तथा किसानों की आय बढ़ाने में मदद करता है। उन्होंने कहा कि भारत फिलहाल सालाना लगभग 22 लाख करोड़ रुपए का जीवाश्म ईंधन आयात कर रहा है। श्री गडकरी ने कहा कि विकसित राष्ट्र बनने के लिए भारत को जीवाश्म ईंधन के स्रोतों पर खर्च कम करना होगा। लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव की जांच करने वाली समिति का कार्यकाल 2026 के बजट सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है। इन विधायकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक साथ चुनाव कराना है। समिति के अध्यक्ष PP चौधरी ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मणिपुर के इम्फाल पहुंच गई है। इम्फाल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके आगमन पर भारतीय रिजर्व बटालियन की महिला टुकड़ी द्वारा ने हार्दिक स्वागत किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नागर विमानन महानिदेशालय ने इंडिगो के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी पीटर एल्बर्स को आज तलब किया है। व्यापक रूप से उड़ानें रद्द होने और देरी के कारण श्री एल्बर्स को महानिदेशालय के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है। इससे पहले नागर विमानन मंत्री राम मोहन ने इंडिगो के शीर्ष प्रबंधन के साथ स्थिरता संबंधी उपायों पर समीक्षा की। इस बीच महानिदेशालय ने गुरुग्राम स्थित इंडिगो के कॉरपोरेट कार्यालय में एक विशेष निगरानी दल का गठन किया है। इसका उद्देश्य उड़ान में देरी होने और इसके रद्द होने की स्थिति में यात्रियों को होने वाली असुविधाओं को दूर करना है। विदेश मंत्रालय गोवा के नाइट क्लब के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा के पासपोर्ट रद्द करने पर विचार कर रहा है। गोवा अग्नि दुर्घटना में 25 लोगों की मौत हो गई थी। सूत्रों के अनुसार मंत्रालय को गोवा सरकार से गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा के संबंध में एक पत्र प्राप्त हुआ है। मंत्रालय मौजूदा नियमों के अनुसार भारतीय पासपोर्ट अधिनियम के अंतर्गत पासपोर्ट रद्द करने के अनुरोध की जाँच कर रहा है। नीति आयोग एक प्रमुख दैनिक उपभोग सामग्री FMCG कंपनी के साथ राष्ट्रव्यापी स्टार्टअप कार्यक्रम शुरू करेगा। इसका उद्देश्य देश को चक्रवाती अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाना है। नीति आयोग ने बताया है कि इस पहल के अंतर्गत अगले 3 वर्षों में चक्रवाती अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने वाले 50 उच्च क्षमता के स्टार्टअप की पहचान की जाएगी और उन्हें समर्थन दिया जाएगा। कार्यक्रम में प्लास्टिक के पुनर्चक्रण, दोबारा इस्तेमाल और पैकेजिंग सामग्री के नवाचार समाधान निकालने वाले स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी। आयोग ने बताया कि चयनित स्टार्टअप को अनुदान राशि के साथ बाजार मान्यता के लिए अवसर दिए जा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि नाबार्ड ग्रामीण आर्थिक स्थिति और रुझान हाल के सर्वेक्षण में ग्रामीण मांग में मजबूत और व्यापक पुनरुत्थान प्रदर्शित हुआ है। सर्वेक्षण के 8वें दौर में पिछले 1 साल में आय में वृद्धि और पारिवारिक कल्याण में सुधार के संकेत मिले हैं। मंत्रालय के अनुसार पिछले साल के मुकाबले 80% ग्रामीण परिवारों ने अधिक खपत किए जाने के बारे में बताया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI उपकरणों को अपनाने, विकसित करने और लागू करने से संबंधित पहलों की निगरानी के लिए सर्वोच्च न्यायालय की AI समिति का पुनर्गठन किया है। पुनर्गठित AI समिति का गठन न्याय व्यवस्था में दक्षता, सुलभता और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा में 100 से अधिक विपक्षी सांसदों ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति G.R. स्वामीनाथन को हटाने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया है। ये कदम उनके उस आदेश के बाद उठाया गया है जिसमें कार्तिकेय दीपम उत्सव के दौरान तिरुपरम कुंद्रम पहाड़ी के पास स्थित एक पत्थर के स्तंभ पर दीप प्रज्वलन की अनुमति दी गई। न्यायालय के आदेश के बावजूद मदुरै जिला प्रशासन ने 3 दिसंबर को कानून व्यवस्था संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए धारा 144 लागू कर दी थी और पुलिस ने कार्यक्रम को रोक दिया था। प्रदर्शनकारियों ने अभियान जारी रखा जिससे मामूली झड़पें हुई और इसमें कुछ लोग घायल हो गए। सरकार ने कहा है कि वो देश में जल्द ही डिजिटल एड्रेस प्रणाली लागू करने पर काम कर रही है। राज्यसभा में आज पूरक प्रश्नों के जवाब में संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेमसानी ने कहा कि ये एक एकीकृत प्रणाली होगी जिसमें कोई भी अपना पता डाल सकता है और उसे संशोधित कर सकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पता प्रामाणिक होगा और उसे कभी परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। श्री पेमासानी ने कहा कि इस प्रणाली में निजता का विशेष ध्यान रखा जाएगा और उपयोगकर्ता के पास इसका पूर्ण नियंत्रण होगा। राज्यसभा ने दीपावली को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए जाने की सराहना की। राज्यसभा के सभापति CB राधाकृष्णन ने कहा कि ये देश के लिए अत्यंत गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि दीपावली केवल एक त्योहार नहीं बल्कि अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में दीपावली को शामिल करना गर्व का क्षण है। इस बीच केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने दीपावली के यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल होने के उपलक्ष्य में केन्या के ऐतिहासिक श्री राम मंदिर में आयोजित समारोह में भाग लिया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच आज चंडीगढ़ में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारतीय टीम 1-0 से आगे है। कटक में हुए पहले मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 101 रन से हराया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने श्री मुखर्जी को महान राजनेता और विद्वान बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दशकों तक अपने सार्वजनिक जीवन में पूरे समर्पण के साथ देश की सेवा की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।